छठा अध्याय उपसंहार पृष्ठ संख्या 259। उपन्यास इस नए युग की नई विधा है। यथार्थ धर्मिता उसका प्राण तत्व है। अतः जिस उपन्यासकार को जीवन का जितना ही गहरा अनुभव होगा, प्रत्यक्ष और अपरागत अनुभव होगा, यथार्थ चरित्रांकन पर वह उतना ही सही उतरेगा। उपन्यास के प्रारंभिक दौर में तो कथा वस्तु की प्रधानता रही, परंतु प्रेमचंद्र जी ने चरित्र चित्रण की पद्धति को उपन्यास के प्राण तत्व के रूप में रेखांकित किया। परिणाम यह हुआ कि मानव जीवन कहिए मानव चरित्र को समझने का एक प्रयास उपन्यास के माध्यम से भी होने लगा। मनुष्य मानव जीवन का अनुभव अप्रत्यक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु उसकी अपनी सीमाएं हैं और अनेक जिंदगियां उसके लिए दरकार हैं। एक जिंदगी में मानव जीवन के व्याप को अधिक से अधिक पाने के लिए उपन्यास से बढ़कर कोई अन्य विधा नहीं है। यह बात यहाँ इसलिए ध्यानार्थ है कि प्रस्तुत अध्याय मानव के एक महत्वपूर्ण प्रत्यय नारी के विविध रूप को लेकर चल रहा है। पैराग्राफ चेंज। उपन्यास में चरित्र विषयक विचार निरंतर बदलते रहे हैं और बदलते रहेंगे, परंतु उसका समूचा छेद कभी उड़ नहीं सकता, क्योंकि समूची औपन्यासिक रचना तो घटाटोप में उसके केंद्र में तो पात्र चरित्र कहिए मनुष्य ही रहता है। उपन्यास में जिन घटनाओं का निरूपण होता है उसके धारक तो पात्र चरित्र ही हुआ करते हैं। अतः E.M. फॉस्टर ने एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में बिल्कुल सही कहा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ह्यूमन बींग्स हैव देयर ग्रेट चांस इन द नॉवेल। घे से टू द नॉवेलिस्ट, रिक्रिएट अस इफ यू लाइक, बट वी मस्ट कम इन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस प्रकार पात्र जीवन में से जगत में आते हैं। पैराग्राफ चेंज। अरस्तु ने त्रासदी के निरूपण में वस्तु संकलन को अधिक महत्व दिया है। वह चरित्र को दूसरे क्रम पर रखता है। इसके विपरीत हेनरी जेम्स आर्टेगा तथा आर्नोल्ड बेनेट आदि कथा साहित्य में चरित्र निर्माण के कार्य को सर्वाधिक महत्व देते हैं। बेनेट तो यहाँ तक कहते हैं कि कथा साहित्य में चरित्र चित्रण के अतिरिक्त और है ही क्या। हमारे यहाँ प्रेमचंद्र भी तो यही कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। प्रेमचंद्र के इस कथन के पश्चात भूत में पाश्चात्य सर्जकों की एक विशाल परंपरा पड़ी है। टॉल्स्टॉय, बाल्जाक, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, ट्रॉलॉप, थॉमस हार्डी, डीएच लॉरेंस तथा जॉयक कैरी जैसे सर्जकों में हमें वैश्विक धरातल पर स्मरणीय पात्रों की एक अनोखी सृष्टि उपलब्ध होती रही है। द सेटिंग सन के काजुको, इडियट के नास्टासिया, मादाम बावरी के मादाम बावरी, पन्नालाल पटेल की जीवी, जनमटीप ईश्वर पेटलीकर की चंदा पृष्ठ संख्या 260, गोदान की धनिया और मालती, नदी के द्वीप की रेखा, वे दिन की रायना, रुकोगी नहीं राधिका की राधिका, छिन्नमस्ता की प्रिया, इदम नमामा की मंदा, मुझे चांद चाहिए की वर्षा वशिष्ठ आदि ऐसे ही चिर स्मरणीय पात्र हैं जो भावक के चिदाकाश में ज्योतिर्मान नक्षत्रों की भांति टिमटिमाते रहते हैं। पैराग्राफ चीन। अतः जब तक उनके लिखने वाला मनुष्य है और उसकी केंद्रीय संवेदना की परिधि में मनुष्य है, तब तक मानव अर्थात चरित्र का महात्म्य तो अपरिहार्य ही रहेगा। प्रस्तुत शोध प्रबंध में इसी मानव के आधे विश्व अर्थात नारी को अध्ययन का विषय बनाया गया है। जिस प्रकार दुनिया के सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार संसार की तमाम स्त्रियाँ भी एक जैसी नहीं होती। उसमें वैविध्य के लिए काफ़ी गुंजाइश है। यह वैविध्य स्थल, काल, परिवेश पर निर्भर है। भाग्यवती उपन्यास की भाग्यवती और मुझे चांद चाहिए की वर्षा वशिष्ठ दो अलग कालखंडों की उपज है। उसी प्रकार मंजुल भगत की अनारो, मैत्रेय पुष्पा की मंदा तथा प्रभा खेतान की प्रिया स्थलीय एवं स्थैतिक दृष्टि से अलग अलग विषयों को लेकर आती हैं। फलतः उनके व्यक्तित्व की रूपरेखाओं में हमें गुणात्मक अंतर प्राप्त होता है। पैराग्राफ चेंज। स्त्री और पुरुष दोनों मानव हैं। अतः उनमें मूल मानवगत वृत्तियां समान होती हैं, परंतु दोनों के संस्कार अनुभव भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे हैं जिनसे केवल स्त्री ही गुजरती है। अनुभव की यह एकांतिकता जहां उसके विश्व को सीमित करती है, वहां उसे वैशिष्ट्य भी प्रदान करती है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में स्त्री के इस वैशिष्ट्य को रेखांकित करने का एक नम्र प्रयास हुआ है। पैराग्राफ चेंज। प्रस्तुत शोध प्रबंध का विषय उपन्यास में निरूपित नारी के विविध रूपों से जुड़ा है, अतः भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में नारी जीवन के कतिपय आयामों की पड़ताल आवश्यक हो जाती है, जिसके अध्ययन हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर ए एस अलतेकर दिनकर, डॉक्टर इरफान हबीब, डॉक्टर नीरा देसाई, श्रीमान जॉन एस मिल, सुश्री बारबरा डेकार्ड, डॉक्टर मृणाल पांडे, सुश्री तस्लीमा नसरीन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती पुष्पावती खेतान, सुश्री कुसुम अंसल, सुश्री प्रभा खेतान, सुश्री सुधा अरोड़ा तथा डॉक्टर पारुकांत देसाई के एतद विषय ग्रंथ तथा लेख पढ़ा जाना आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज। आधुनिक काल में नारी का जो रूप हमें उपलब्ध होता है, वह असंदिग्धतया मध्यकालीन या रीतिकालीन तो नहीं ही है। आधुनिक काल में हमें प्रायः नारी का संघर्षाकुल रूप मिलता है, जिसकी पृष्ठभूमि का निर्माण ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लोक जागरणाभिमुख आंदोलनों ने किया था। नारी की किंचित उच्चभू स्थिति के लिए आधुनिकता के अरुण राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, पंडिता रमाबाई, मादाम कर्वे, मादाम ब्लावत्स्की, श्रीमती एनी बेसेंट, दुर्गा शंकर मेहता, वीर नर्मद, नवीन चंद्र राय, पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी, मन्नन द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सर सयाजी राव गायकवाड़ जैसे महानुभावों का योगदान स्मरणीय होगा। पृष्ठ संख्या 261। इस संदर्भ में प्रगतिवादी मार्क्सवादी लेखकों एवं कथाकारों के योगदान को भी रेखांकित करना आवश्यक है। इधर अपने यहाँ तथा विश्व में जो फेमिनिस्ट थिंकिंग चल रही है, उसने भी विशेषतः शिक्षित नारी को आंदोलित किया है। नारी का शोषण तो सर्वत्र और सार्वकालिक रहा है, तथापि ग्रामीण क्षेत्र की नारी या अपेक्षाकृत पिछले समाज की नारी अधिक संघर्षशील पाई जाती है। वहां स्त्री पुरुष गैर बराबरी का परिणाम भी कम पाया जाता है। पैराग्राफ चेंज। उक्त धार्मिक सामाजिक आंदोलन तथा नवीन वैश्विक परिवेश तथा चिंतन की नई दिशाओं के कारण प्रेमचंद पूर्व काल के लेखकों में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, मन्नन द्विवेदी जैसे लेखकों में नारी को लेकर सुधारवादी दृष्टिकोण पाया जाता है, तो दूसरी तरफ उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लज्जाराम मेहता शर्मा, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, पंडित राधाचरण गोस्वामी जैसे सनातनपंथी लेखक भी पाए जाते हैं, जो नारी शिक्षा और नारी जागृति का विरोध करते हुए नारी के मध्यकालीन पराधीन रूप को ही भारतीय संस्कृति का प्रत्यय बनाने की भरसक कोशिश करते हैं, परंतु उनको यह कोशिश करनी पड़ती है। इस तथ्य से इतना तो प्रमाणित हो जाता है कि सामने नारी जागृति वाला पक्ष काफी प्रबल था। पैराग्राफ चेंज। प्रेमचंद काल में नव सुधारवादी आंदोलन प्रायः सर्वग्राह्य हो चुके थे, फलतः प्रेमचंद तथा प्रेमचंद काल के लेखकों में नारी एक कदम आगे बढ़ी है। वह अब श्रद्धा नहीं है, भोग्या नहीं है, परंतु जीवन के संघर्ष में पुरुष की सहभागिनी है।